हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 12 और 13। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र और आध्यात्मिक शब्दों को श्रवण करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोहेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपरान्तिकम्। वंशी विभूषित कला नवनीरधाभा पीतांबर धारुं बिंब फल धरोष्ठा पुलेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णातरं किमपि तत्व अहं न जानी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः तुवन्ति ये स्तवी वेदेशाङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामधा ध्यानावस्थित तत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणं देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामि धीरये नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 12। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। शौनक मुनि सुत गोस्वामी से कह रहे हैं, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायण जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विध्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणाजना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विध्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विध्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विध्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विध्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विध्य कुतः कलेवरम्। शब्दों का अर्थ, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये। शिवाय अर्थात कल्याण हेतु, लोकस्य समस्त जीवों के, भवाय सम्मुन्नति के लिए, भूतये आर्थिक विकास के लिए, ये जो है उत्तम श्लोक परायण अर्थात भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त जना लोग जीवन्ति जीते हैं न लेकिन नहीं आत्मार्थ स्वार्थ असौ वह पराश्रयम अर्थात अन्यों के लिए शरण मुमोच त्याग दिया निर्विध्य समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर कुतः कलेवरम कुतः अर्थात किस लिए कलेवरम अर्थात मृत्य शरीर को। अनुवाद, जो लोग भागवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे अन्यों की कल्याण उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की अनासक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो अन्यों के लिए आश्रय तुल्य था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज आदर्श राजा थे तथा ग्रस्त थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं। महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन चूंकि वो जनता की चतुर्दक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा कच्चे प्रशासक नहीं थे जो एक जीवन को तो सुरक्षा प्रदान करते हैं, दूसरे का वध कर देते हैं। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतएव वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार शासन करना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले जीव नहीं थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्मविस्तीर्ण होता है। वे इन दोनों से रहित थे। इसका स्वार्थ, उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में ही था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनकी आज्ञाकारी बने रहें और इस तरह से वे सुखी हो जाएं। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के नाम वापस जाने में मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम में जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को चाहिए कि पशुओं को न खाएं। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता हो रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भर कर खा पी सके। यदि सारे जीव अन्न तथा आश्रय से संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें, तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराजा परीक्षित योग्य राजा थे, अतः उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। शौनिक मुनि सूत गोस्वामी से परीक्षित महाराज के विषय में अधिक जिज्ञासा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं शिवाय लोकस्य, शिवाय कहते हैं कल्याण को। क्यों कल्याण के विषय में ये पूछ रहे हैं? क्योंकि जब तक वो राजा थे तो संसार का कल्याण था, क्योंकि जो अच्छे राजा होते हैं वो सदैव अपनी प्रजा के सुख समृद्धि, क्या लिखा है, शिवाय लोकस्य भवाय भूतय। लोकस्य यानी सारे लोग के साथ, क्योंकि राजा जो शुद्ध पवित्र राजा होते हैं, राजर्षि उनको बोलते हैं, वो समस्त जीवों के भवाय भूतय यानी समुन्नति के लिए और आर्थिक विकास के लिए, कि किस तरह से जीवों का कल्याण हो, किस तरह से उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सोल्व हो जाए ताकि वो आध्यात्मिकता में उन्नति कर सके, तो वो इसी तरह से कार्य करते हैं। और यह उत्तम श्लोक परायण जना, उत्तम श्लोक परायण भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त, इसका मतलब श्री प्रभुपाद ने बताया, क्योंकि राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो भगवान की जो इच्छा होती, क्या इच्छा होती है भगवान की, कि सारे जीव जो है वो भगवान के आज्ञाकारी बने, भगवान के आदेशों का पालन करें, जो शास्त्र में उन्होंने भगवान ने जो आदेश दिए हैं। तो राजा क्योंकि प्रतिनिधि होता है, तो राजा का स्वार्थ क्या होता है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करे, यानी उनको इस तरह से प्रशिक्षित करे अपनी प्रजा को कि समस्त जितने भी उनके प्रजावासी हैं वो सारे भगवान के धाम में जा सके, अथवा प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार से समन्वित करते हैं। जो राजा अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं कि सारे लोग अंत में वो ऐसे कार्य करेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म किस लिए करेंगे? मोक्ष प्राप्त करने के। अर्थ किस लिए करेंगे? धर्म को पालन करने के लिए। और काम कितना करेंगे, इच्छा कितनी होगी? यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बताया कि सारे लोग सिर्फ निर्भर होंगे, अन्न के ऊपर आश्रय करेंगे और अन्न दुग्ध वगैरह यही चीजें खाएंगे। तो फिर आश्रय से संतुष्ट अगर इसी से हो गए तो फिर नियत नियमों का पालन करेंगे तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव, फिर कुछ कोई किसी को ना मारेगा ना किसी को तकलीफ देगा, क्योंकि आज जीव की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही उसको। कुछ भी उसको प्राप्त हो जाए, संतुष्टि नहीं है तो फिर वो क्या करता है, दूसरे को संतुष्ट समझकर उससे जियलसी करता है, जिसके कारण वो दूसरों को दुख देता है। हर कोई जीव जो है दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए ना कार्य करना, बस खुद खुशी मिले ना मिले, उसको खुशी मिलती ही बल्कि आज के जीव को इसमें है कि दूसरों को कष्ट में देकर, क्योंकि कष्ट उसके तो समाप्त हो नहीं रहे, दुख किस बात का हो रहा है उसको कि दूसरे क्यों सुखी है। लेकिन अगर राजा अच्छा होता है और सबको संपन्न, सारी प्रजा संपन्न होती है तो जो आपस में जीव जीव में उपद्रव होता है वो नहीं, वो मिट जाता है। इसीलिए कहा यह उत्तम श्लोक पर आया, क्योंकि भगवान की इच्छा ये होती है कि सारे जीव संतुष्ट हो जाएं और मेरे पास अंत में भगवत धाम को प्राप्त करें। तो जो पवित्र राजा होता है वो जीवों के लिए इसी तरह से कार्य करता है कि सब जीवों को अंत में भगवत धाम की प्राप्ति हो। जीवंती नात्मार्थम असौ पराश्रयम्, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहता है, न आत्म अर्थ। आत्म अर्थ का मतलब होता है स्वार्थ के लिए। जो राजा होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया दो प्रकार के स्वार्थ होते हैं, एक आत्म केंद्रित होता है और दूसरा आत्म विस्तीर्ण होता है। आत्म केंद्रित कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं इस तरह से सुखी रहूं, मैं इस तरह से सुखी रहूं। कुछ लोग इसी तरह से सुखी रहना चाहते हैं कि मुझे मेरी इच्छाएं पूरी होंगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन विस्तीर्ण कैसे होता है कि नहीं, मेरे घर वालों की इच्छा पूरी हो, मेरी संतान की इच्छा पूरी हो, उससे आगे जाओ, मेरे ना प्रजा की इच्छा पूरी हो, मेरे देशवासियों की इच्छा पूरी हो, उससे आगे जाओ, तो मेरे जितने भी है ना मुल्कवासी हैं, जितने जो भी हैं सारे कंट्रीज, अब विस्तीर्ण हो जाती है तो भी उसमें वो प्रसन्न होता है। जैसे अगर कोई लोग क्या होते हैं, खा के प्रसन्न होते हैं कि मैंने ये चीज बनाई है तो मैं ये खाऊंगी तो प्रसन्न हो जाऊंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं खिला के प्रसन्न होते हैं कि नहीं, जब मैं सबको खिलाऊंगी तो प्रसन्नता। तो ये भी एक तरह की आत्मदृष्टि होती, स्वार्थी होता है वो, विस्तीर्ण होता है स्वार्थ। लेकिन महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा है शौनक मुनि ने, मुमोच निर्विध्या। मुमोच यानी उन्होंने सारा जो ये सुख था, चाहे वो आत्मदृष्टि आत्म केंद्रित हो या फिर विस्तीर्ण हो, उस सबको मुमोच कर दिया था, त्याग दिया था और समस्त प्रकार की आसक्ति से निर्विध्य यानी मुक्त हो गए थे। फिर उन्होंने कुतः कलेवरम, उन्होंने अपना ये शरीर जो मर्त शरीर है जिससे सबका फायदा हो रहा था, सारे जीवों का कल्याण हो रहा था, उन्होंने अपने इस शरीर को क्यों त्यागा। यानी कि वो देख रहे थे उनकी अपनी तो कोई आसक्ति थी नहीं, रही नहीं, उनके होने से समस्त प्रजा का कितना कल्याण हो रहा था, तो फिर उन्होंने अपना यह मर्त शरीर क्यों त्यागा जो कि अन्यों के लिए आश्रय तुल्य था ना, पराश्रयम यानी सबके लिए आश्रय शरण था और है ना सबको सुरक्षा प्रदान करने वाला ये शरीर था, तो उन्होंने अपना ये शरीर क्यों त्यागा। वास्तव में भक्तों, शौनक मुनि इस श्लोक में एक अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि समस्त जीव जो है उनमें से जो भगवान के भक्त होते हैं उनका अपने जीवन के लिए, अपने आत्मतुष्टि के लिए कोई कारण नहीं होता. उनके जीने का कारण क्या होता है? ताकि वो समस्त जीवों का कल्याण कर सके, समस्त जीवों को उनके जीवन का लक्ष्य प्रदान कर सकें. तो उनके जीवन का लक्ष्य ही होता है. तो क्योंकि महाराज परीक्षित जब तक थे तो फिर समस्त जीवों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही सरलता से वो कर रहे थे. क्योंकि सब चीजें अब वो गौवध नहीं करने देते थे, वो पशु हत्या नहीं करने देते थे और नियमों का पालन कराते थे अपनी प्रजा को. तो इस तरह से क्या था कि सब लोग की भलाई हो रही थी. तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा किया उन्होंने, कि इन सब जिसके कारण अपने शरीर को त्यागना क्यों स्वीकार किया, जिनके कारण इतने लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे थे, उन्नति कर रहे थे, अब सब लोग उन्नति नहीं करेंगे इसके कारण. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने शरीर को त्यागा? कुतः कलेवरम, यानी अपने शरीर को. भौतिक शरीर वास्तव में किसी कार्य का नहीं होता है, ये चील कवों के खा लेने के योग्य होता है. किसी भी ये हार्ड मास से बना हुआ शरीर कुछ नहीं है इस भौतिक देह में. लेकिन जब अगर कोई राजा होता है और अगर हमारे इस शरीर से किसी का कल्याण हो रहा है ना, हमारे इस शरीर से किसी को किसी के जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, यही सबसे बड़ी सार्थकता है हमारे शरीर की. बाकी इस शरीर में कुछ नहीं भरा हुआ, इसको सजा कर संवार कर इसको रखना, ये नहीं. हम कितना अपने इस शरीर से दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, कितना दूसरों को भक्ति में उन्नति करने में, कितना उनको जीवन का लक्ष्य प्रदान करने में उनकी सहायता कर रहे हैं, वही केवल इस शरीर की, इस नाशवान शरीर की एक ही क्वालिटी है कि कितना हम किसी की भक्ति में सहायता. वास्तव में भक्तों दूसरी भी बहुत सारी सहायता होती है, जैसे किसी को है ना भौतिक स्तर पर कोई उनकी हेल्प कर देना, किसी तरह से खाना खिला देना या किसी भूखे को, या फिर किसी के पास मेडिसिन नहीं है वो. लेकिन वास्तविक में ये दुख दूर होंगे नहीं. एक दुख खत्म होगा, दूसरा दुख आ जाएगा, तीसरा दुख खत्म होगा. वास्तव में यदि किसी का भला अगर करना चाहते हैं तो उसे भगवान की भक्ति में लगाएं. क्योंकि भक्ति से क्या होगा, समस्त पाप समस्त अपराध यदि आपके होने से यदि किसी ने एक बार भी भगवान के पवित्र महामंत्र का जप कर दिया, भगवान के नाम को उच्चारण कर दिया, तो इससे क्या होगा, उनके जन्म जन्मांतर के अपराध नष्ट हो जाएंगे. अपराध नष्ट हो गए समझो कष्ट नष्ट हो जाएंगे, है ना. अपराध नष्ट हो गए, हृदय पवित्र हो गया, तो फिर दोबारा उसे कभी इस कष्टमय जीवन को गुजारना नहीं पड़ेगा. तो फिर ये कितना बड़ा दान है. सबसे बड़ा दान यही है कि हम किसी को भगवान का पवित्र नाम का दान करें. इसीलिए डिवोटीज जब मिलते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं हरे कृष्ण, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, इवन दुश्मन भी हो, उसको भी बोलते हैं हरे कृष्ण, ताकि उसका भी कल्याण हो. क्योंकि भगवान का नाम जो है वो सबका कल्याण करने वाला. तो यहाँ पर ऋषि पूछ रहे हैं क्योंकि इस राजा के होने से सबका कल्याण हो रहा था, तो फिर उन्होंने अपने शरीर को क्यों त्यागा? श्लोक नंबर 13, कृपया मेरे साथ साथ रिसाइट कीजिए. शौनक मुनि कह रहे हैं, तत्सर्वं न समाचक्ष्वा पृष्टो यद्देह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातनमन्यत्र छान्दसात्. तत्सर्वं न समाचक्ष्वा पृष्टो यद्देह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्. तत्सर्वं न समाचक्ष्वा पृष्टो यद्देह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचा स्नातमन्यत्र छान्दसात्. तत्सर्वं न समाचक्ष पृष्टो यद्देह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचा स्नातमन्यत्र छान्दसात्. तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यद्देह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचा स्नातमन्यत्र छान्दसात्. तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो दृष्टोऽयस्तिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। शब्दों का अर्थ, तत् सर्वं न समाचक्ष्व, तत् मन वह, सर्वं यानी सारा, न हमसे समाचक्ष्व, स्पष्ट कहिए। पृष्टो यद्य किंचन, पृष्टो मतलब प्रश्न पूछा है, यद यह इह यानी यहाँ पर, किंचन वह सब। मन्ये त्वाम विषये वाचा, मन्ये मतलब हम सोचते हैं, त्वाम यानी आपको, विषये सारे विषयों में, वाचाम यानी शब्द अर्थ, स्नातनम पूर्णतया विज्ञ, अन्यत्र छोड़कर, छांदसात यानी वेदों का अंश। अनुवाद, हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों और प्रविजिक आचार्य होते हैं ना, उनमें और ब्राह्मणों में जो अंतर होता है वही वेदों में और पुराणों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सत्काम यज्ञों के संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन प्रविजिका आचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना होता है। अतएव परिव्राजक आचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पट्टुने होते हैं, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है। क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं, लेकिन इससे यही नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मणशील उपदेशकों यानी प्रवराजिकों की उपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक तथा भिन्न हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक होता है। वैदिक मंत्रों एवं पुराणों तथा इतिहासों में जो कुछ वर्णित है उनमें कोई अंतर नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार माध्यन दिन श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत हुए हैं। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्राणव अर्थात ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की उपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्री सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही वे वैदिक मंत्रों के स्वर पाठ में उतने पटु ना हो, जो वास्तविक अनुभूति की उपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटंत की उपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर शोनित मुनि अंतिम प्रश्न अंतिम बात कर रहे हैं, उसके बाद सूत गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। और उन्होंने अंतिम श्लोक जैसे अपने इस वाक्य में उन्होंने क्या कहा है कि तत्सर्वम न समाचक्षव, तत्सर्वम यानी कि जो सारा का सारा अभी हमने आपसे पूछा है, समाचक्षव अर्थात आप हमसे स्पष्ट बताइए, ये जो हमने पृष्ठो यद यह किंचन अभी मैंने जो आपसे पूछा है वह सब मुझे हमें पूरा का पूरा बताइए, क्यों आपसे पूछा है। मन्ये त्वाम विषये वाचा, मन्ये मतलब हमारे मन के अनुसार हम क्या सोचते हैं कि त्वाम आप जो है विषय जितने भी ये सारे विषय हैं वाचा शब्दार्थ स्नातनम पूर्णतया विज्ञ यानी कि जितने भी विषय हैं शास्त्रों के और इतिहास के और भागवतम के उन सब में आप बिल्कुल वाचांश हैं, आप सनातनम है वो आप बता सकते हो। वाचांश मतलब शब्दार्थ आपको आता है और स्नातनम यानी आप पूर्णतया विज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो, तो आप हमें बताओगे क्योंकि आप सब कुछ जानते हो इसलिए हमने आपसे पूछा है, तो आप हमें सब कुछ बता दो। लेकिन हम इतना भी जानते, यहाँ पर एक सीक्रेट बात भी लिखी है, अन्यत्र अन्यत्र मतलब कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है। क्या छांदसात का मतलब पता है, वेदों का एक अंश होता है। अब वेद में क्या यहाँ पर ये बताने की क्या मतलब, वो क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंशों को छोड़कर अन्यत्र छांदसा यानी वेदों में कुछ एक अंश ऐसा है जिसको छोड़कर आप बाकी सब कुछ जानते हो, तो आपने हमसे हमने आपसे जो जो प्रश्न पूछे हैं वो आप हमें बता सकते हो, हम जानते हैं तो आप हमें बताए। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ये कहने की क्या जरूरत थी, कहना आप सबको जानते हो आप हमें बताओ, लेकिन आप कुछ नहीं जानते हो, कुछ ऐसा है जो आप नहीं जान रहे हो, बाकी सब आप जानते हो तो आप हमें बताओ। ये वास्तव में बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम है वो एकदम ऑनेस्ट ग्रंथ है, ऑनेस्ट है और उसके अंदर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई जो कुछ है वो एज इट इज है, वो बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में कुछ नहीं छुपाया गया, वो बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। और यहाँ पर बताने का कारण श्रील प्रभुपाद जी भी बताएंगे आगे, हम अभी तात्पर्य को समझेंगे, पहले श्लोक को देखते हैं। उन्होंने कहा तत्सर्वम न समाविष्ट पृष्ठो यदि यह किंचनम मन्ये त्वम विषय वाचन, हम जानते हैं कि आप स्नातनम हो, आप पूर्णतया विज्ञ हो, अन्यत्र छांदसात यानी वेद के अंदर जो श्लोक होते हैं ना, वेद के जो मंत्र होते हैं उनको उच्चारण करने के लिए बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास क्योंकि वो एक स्वर होता है, एक लय होती है जिसमें उन वेदों के मंत्रों को पढ़ा जाता है। लेकिन जो ये सूत्र गोस्वामी थे उन्होंने इसमें इतनी एक्सपर्ट वो नहीं थे, यानी कि वो उनको वेदों के, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है छंद सात, वेदों का जो छंद यानी कि स्वर में श्लोक उच्चारण करना वो उनको इतना नहीं आता था, बाकी सब कुछ आता था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बताया कि देखो वेदों और पुराणों में वही अंतर है जैसा ब्राह्मणों और परिव्राजकों में होता है। अब उन्होंने क्या वेदों में इतनी निपुणता नहीं थी, लेकिन पुराण यानी श्रीमद् भागवतम महापुराण अभी बताएंगे उसमें बिल्कुल निपुण थे। तो अब ब्राह्मणों और परिव्रजकों में क्या अंतर होता है, ब्राह्मण क्या करते हैं वेदों में वर्णित कुछ सत्काम यज्ञों के, ब्राह्मणों का काम क्या होता है कि वेदों में जो बताया गया है क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष और संसार में रहकर कुछ सत्काम यज्ञ संपन्न करने के लिए आपको बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है तो ये करो, ब्राह्मण लोग यही कार्य करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी वैदिक संस्कृति में क्या होता है कि पहले ब्राह्मण जो है वो समाज का प्रमुख होता है यानी हेड होता है, लेकिन परिव्रजक जो भक्त होते हैं वो ब्राह्मणों के भी हेड होते हैं। वो कैसे होता है, क्योंकि ब्राह्मण क्या बताते हैं भौतिक स्टेज के ऊपर धर्म अर्थ काम मोक्ष बताएंगे और उसके अतिरिक्त जो है ना आपकी कोई समस्याएं होंगी जैसे कुछ वेदों में जो यज्ञ इत्यादि बताए होंगे उनके विषय में बताएंगे, लेकिन परिवार जो भक्त जो होंगे वो आपको क्या बताएंगे, भक्ति के विषय में, है ना। भक्ति नहीं है तो भले आप धर्म कर रहे हो, अर्थ कमा रहे हो, काम जो इस समक्ष कुछ भी संभव नहीं है। वास्तविक जो है जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं त्रय गुणियों विषया वेदा निस्त्रय गुणों भवार्जुन, कि वेदों में तो ज्यादातर तीन गुणों के विषय में बताया गया, तुमको क्या करना है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो वेदों के श्लोकों को बहुत अच्छे तरीके से रटन करते हैं, बताते हैं और उन्हीं के विषय में व्याख्या करते हैं। लेकिन परिवचक आचार्य जो होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, जीव को इस भवबंधन से मुक्त करना। तो ये जो परिव्रजक आचार्य होते हैं वो ब्राह्मणों से उच्च कोटि के होते हैं। वास्तव में क्या है, सबसे बड़ा वेदांती वो है जिसको भगवान से प्रेम हो। अगर किसी को वेदों का, सारे वेदों के जितने भी श्लोक हैं, जितने भी वेदों के छंद हैं, वो अच्छे तरीके से आ रहे हैं, परंतु भगवान से प्रेम नहीं कर रहा, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो फिर क्या है, सारा फिजूल है। शास्त्र का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें अच्छी तरह से मंत्र उच्चारण करना आ जाए, क्योंकि केवल मंत्र उच्चारण करने से भगवत धाम जाने की कोई गारंटी नहीं होती है। जो वेदों के बड़े बड़े मंत्र होते हैं और उनको उच्चारण करने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, वो यदि नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बताया पुराण और वेदों में अंतर। पुराण में नहीं, पुराण में क्या है, तो अभी जो भगवान के भक्त होते हैं ज्यादातर उनको वेदों के विषय में पता नहीं होता है, लेकिन वो भगवत गीता और भागवतम, यानी भागवतम पुराण के श्लोकों के विषय में बताएंगे, भगवत गीता के श्लोक में विषय में बताएं, तो कोई आके बोलेगा उस वेद में ये लिखा, वेद में। वास्तव में वेदों का उद्देश्य क्या, भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदों को जानने का मकसद मुझे जानना है। और आगे करके हम भागवतम में भी पढ़ेंगे, उसमें आता है कि अगर कोई ग्रंथ है जो भगवान का गुणगान कर रहा हो, भगवान के प्रेम के विषय में बता रहा हो, उसमें भले ही कितनी ही गलतियां हो, परंतु वो पढ़ने योग्य है, वो मुनियों के भी पढ़ने योग्य है। और अगर कोई भौतिक दृष्टि से कोई शास्त्र ऐसा है जो बिल्कुल परफेक्ट है, उसके अंदर कोई गलती नहीं है, माना जो वो लिखे हुए हैं ना सारी चीजें, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखी हुई है, लेकिन यदि उससे आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो रही तो क्या फायदा ऐसे शास्त्र का अध्ययन करने का। तो वास्तव में भक्तों, जो शुद्ध भक्त होता है ना, अगर वो इतना अच्छा श्लोक का उच्चारण नहीं कर रहा है, कुछ ना उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन शुद्ध भक्त के मुखारविंद से श्रवण करके ही हम संतुष्ट हो सकते हैं, हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, भगवान से प्रेम स्थापित कर सकते हैं। शुद्ध भक्त की वाणी में यदि कोई दोष भी होता है, परंतु क्योंकि उसका लक्ष्य जो होता है वो एक ही होता है, उसके जीवन का उद्देश्य सही है, तो फिर वो अगर कोई भौतिक दृष्टि से अगर उसमें कोई गलती भी होती है उसके उच्चारण में, उसके कार्य में, तो उसको नहीं देखना चाहिए। और अगर कोई भौतिक लेवल पर बिल्कुल अच्छा कर रहा है, एकदम सही कर रहा है, लेकिन जीवन का उद्देश्य वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर रहा है और आपको भी कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर रहा है, तो फिर क्या फायदा है ऐसे व्यक्ति के साथ श्रवण करने का। वास्तव में ज्ञान का उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 7 में ज्ञान और ज्ञानी के विषय में बताते हैं और ज्ञानवान के विषय में बताते हैं। चैप्टर नंबर 7 टेक्स्ट नंबर 16 में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थात् ज्ञानी च भरतर्षभ। जो ज्ञानी होते हैं वो मेरे पास आते हैं। ज्ञानी मीन्स व्हाट, सीकर ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अभी तक उस लेवल ज्ञानवान नहीं बने, अभी ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानवान बन जाएंगे तो क्या करेंगे, भगवान 7.19 में बताते हैं जो ज्ञानवान होंगे ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो तो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाएंगे। तो वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं, जिन्होंने अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग करके भगवान की शरण ली है, वही ज्ञानवान है। इस संसार के वो भौतिक ज्ञानी जो कि भौतिक धरातल पर ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, बहुत ज्यादा एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन यदि वो ये नहीं जानते कि किस प्रकार से मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करूं, तो वो कैसे है? जैसे इस भौतिक जगत का रक्षण करने के लिए दुर्गा देवी, जैसे हम सब जानते हैं, दुर्ग शब्द का क्या अर्थ होता है? एक किला। वास्तव में यदि जैसे जेल है ना, अगर कोई जेल में फंस जाता है और वो जेल में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है कि ये इसकी दीवारें सीमेंट से बनी हुई हैं या ब्लॉक से बनी हुई हैं या टाइल्स लगे हुए हैं, ये जो ये क्या है, सलाखें लोहे की बनी हुई है, सबके विषय में पढ़ता है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। जेल में आया है तो उसको क्या ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं कैसे इस जेल से बाहर निकलूं? और कोई अगर आध्यात्मिक लेवल पर भी ज्ञान दे रहा है वो, लेकिन वो प्रेम प्राप्त नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ है ना, ये देख रहा है कि ये जो इसका दरवाजा है वो खुलेगा कैसे, उसको पता चलेगा कि है ना ये दरवाजा इस तरह से खुलेगा फिर मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन वो उस दरवाजे को खोलता नहीं। अर्थात वो ज्ञान प्राप्त करता है परंतु उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा, उससे निकलने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो वास्तव में क्या है, तो श्रीमद् प्रभुपाद ने एक अत्यंत ही सुंदर बात बताई है श्लोक के तात्पर्य के अंतिम लाइन में। श्रीमद् प्रभुपाद जी कहते हैं, तोता रटन की उपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात रियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पैरट लाइक चैंटिंग, कि हम बस श्लोकों को याद करते जाएं और ना कोई भी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या फायदा उसका। जब हम हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, यदि कोई हम आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं कर रहे हैं, तो शास्त्र अध्ययन करने का कोई फायदा नहीं। ऐसा हम लोगों ने पहले पढ़ा, धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेत् यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। कि वास्तव में धर्म का अनुष्ठान करने के बाद आपकी रति उजागर होनी चाहिए भगवान के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति, शुद्ध भक्तों का सम्मान, शुद्ध भक्तों से सुनने की इच्छा। यदि ये सब हृदय में उत्पन्न नहीं हो रहा है तो श्रम एवही केवलम, केवल गधे की तरह श्रवण करने के लिए ये समझो उसके समान है। यदि भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है तो वास्तव में श्री प्रभुपाद ने क्या कहा, रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रटन करने से। खाली हम रटन करते जाएंगे और है ना रियलाइजेशन नहीं होगा तो उसका कोई, अरे रियलाइजेशन या साक्षात्कार कहते किसे, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। रियलाइज को, जैसे रियलाइज में जितने भी शब्द हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है आर, है ना, आर से क्या है, रीडिंग यानी ज्ञान प्राप्त करना। अब श्रवण करना भी रीडिंग है, यानी कि सुन रहे हैं यदि हम और हम पढ़ रहे हैं तो एक ही अवस्था है कि हम उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक विज्ञान नहीं होगा। कोई लोग बोलते हैं कि भाई शास्त्र अध्ययन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्रेम ही प्राप्त करना है, तो वैसे ही, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विज्ञान नहीं होगा। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि ज्ञान कैसे है, जैसे हमारे मुंह में अन्न डालना, लेकिन जो आपने खाया है उससे आपको शक्ति नहीं मिलती है, जो आपने पचन किया है ना उससे आपको शक्ति मिलती है। तो जितना हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें से जितना हम उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं वो वास्तविक में ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य कितना है, कि हम उसको कितना साक्षात्कार कर रहे हैं, कितना विज्ञान, कितना प्रैक्टिकल हो रहा है। तो साक्षात्कार में ये नहीं, ये सिर्फ पढ़ाई करना काफी नहीं, खाली रीडिंग कर रहे हैं हम, शास्त्रों को रटन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं श्लोकों को, ये काफी नहीं है, कितना हम उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। और जैसे जैसे अपने जीवन में उसका साक्षात्कार करते जाएंगे, शुरू में क्या होता है, श्रद्धा होती है हमारी, तभी हम श्रवण करते हैं। जो श्रद्धा नहीं है वो तो ना सुन सकेगा और ना ही अपने जीवन में उतार। थोड़ी सी श्रद्धा होगी शुरुआत में तो फिर उसके बाद क्या होगा, श्रद्धा करके सुनेंगे, उसके बाद अदव श्रद्धा तथा साधु संग, फिर भक्तों का संग करेंगे, इससे अनर्थ निवृत्ति होगी और हृदय पवित्र होने के बाद निष्ठा आ जाएगी। निष्ठा भक्ति में, श्रद्धा क्या है, श्रद्धा बनाना ट्री की तरह है। बनाना ट्री कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, उसको कोई भी तोड़ के निकाल के सकते, लेकिन निष्ठा कैसी है, वट वृक्ष की तरह, क्योंकि वट वृक्ष की बहुत सारी जड़े इतनी अंदर तक घुसी हुई होती है कि बहुत बड़ा ताकतवर हाथी भी आ जाए तो उसको गिरा नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें अध्ययन करना है, रीडिंग करनी है शास्त्रों की, उनको पढ़ना है, और उसके बाद क्या करना है, इनसे इंक्वायरी कि हमको समझने, देखो गुरु की जिम्मेदारी क्या है कि वो समझाएंगे, लेकिन समझने की जिम्मेदारी तो शिष्य की है ना, बस गुरु ने बता दिया और हमने सुन लिया और उसको कभी भी मनन नहीं कर रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में ना इंक्वायरीज नहीं कर रहे हैं, प्रश्न। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज के लिए उल्टे सीधे प्रश्न करो। कल हमने पढ़ा था, श्रीप्रभुपाद ने बोला था कि निरर्थक प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन जो चीज समझ में नहीं आ रही है सिद्धांत के विषय में, कुछ लोग है ना लीला के विषय में, लीला से तो आनंद लेना होता है, जो भगवान की लीला है ना उससे आनंद लेना चाहिए, लेकिन जो सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, उनके लिए है ना इंक्वायरी करनी चाहिए। इसलिए तो भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपात है ना, परि प्रश्न न सेवा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वी शुड नॉट हियर लाइक अ हॉक, हमें सुअर की तरह नहीं सुनना चाहिए। वैसे तो ऐसे कहते हैं ज्यादातर कि वी शुड नॉट एंजॉय द लाइफ लाइक अ होक, कि हमें सुअर की तरह लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहिए, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं सुअर की तरह सुनना नहीं चाहिए। मतलब क्या हुआ कि सुअर के ना बड़े बड़े कान होते हैं, लेकिन यदि वो प्रवचन में बैठ जाए और हम उसको बोलते हैं कि भाई आहार निद्रा भाई मैथुन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, तो समझेगा क्या, समझेगा कुछ नहीं, सुनता रहेगा और बाद में जब प्यास खत्म हो जाएगी तो कहाँ जाएगा, वही विष्ठा ढूंढने के लिए, मल खाने के लिए सदा जाएगा। तो सुअर की तरह नहीं सुनना है, हमें किस तरह से सुनना है, भक्त की तरह। और भक्त क्या करता है, उसको समझने का प्रयास करता है और अपने जीवन में आगे क्या है, आर ई के बाद ए, ऐसे क्या अपने जीवन में अप्लाई करना, अपने जीवन में उसको उतारना, अपने जीवन में उसको यूज करना कि कैसे से। वास्तव में ये जो वैदिक ज्ञान, जो शास्त्र का ज्ञान है वो कैसा है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के तरह, जिस तरह डॉक्टर्स हमें एडवाइस देते हैं, हमारी यदि कोई बीमार हो जाता है, कोई दुख हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा चेकअप करते हैं और उसके बाद में हमें दवाई देते हैं। लेकिन डॉक्टर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास भी चले जाएं और अच्छे से अच्छी दवाई भी देकर आ जाएं, लेकिन उसको हम अलमारी में बंद कर दें, है ना, जो मेडिसिन है उसको अपने जीवन में यूज नहीं करेंगे तो फिर कभी भी फायदा नहीं होगा। उसी तरह से यदि सतगुरु हमें बहुत अच्छे उपदेश देता है, जीवन से संसार के जितने भी भौतिक क्लेश है उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छी दवाई देता है, भगवान का पवित्र नाम देता है, लेकिन यदि हम उस पवित्र नाम का अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। वास्तव में गुरु जो है वो डॉक्टर की तरह है, और जो वो जो भी मेडिसिन दे रहा है, यानी गुरु जो अपने आदेश दे रहा है कि आपको ये करना है, और उसके साथ साथ ये भी बताते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं कि देखो इस मेडिसिन का असर नहीं होगा यदि आप ये चीजें खाओगे या ये कार्य करो, उस तरह डॉक्टर भी बोलते हैं हरिनाम का आपके जीवन में असर नहीं होगा यदि आप नाम अपराध करोगे। तो यदि हम ये सारी चीजों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। वास्तव में गुरु के जितने आदेश हैं वो एक कुकिंग बुक की तरह, जैसे कुकिंग बुक में सारी है ना चीजें लिखी होती है, इंग्रेडिएंट्स लिखी होती है, फिर रेसिपीज लिखी होती है कि देखो आप इसको ऐसे करना, फिर ऐसे ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना, फिर इसको पकाना और उसके बाद बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो जाएगा और उससे आप बहुत आनंदित हो सकते हो। उसी तरह से हम भी यदि अपने गुरु महाराज के आदेशों को अपने जीवन में, क्योंकि हमारा हृदय जो है वो पत्थर के समान है, और यदि हम गुरु के आदेशों के द्वारा जैसे हम अपने हृदय को पकाएंगे तो क्या होगा, हमारा हृदय जो है वो पत्थर से मक्खन की तरह बन जाएगा। और वो माखन चोर आकर हमारे हृदय को चुरा के लेकर जाएगा, लेकिन ये पत्थर वाले हृदय में वो आएगा नहीं। जिस तरह से हम कुक बुक में पढ़ते रहेंगे और रोजाना रीड करेंगे, याद करेंगे, लेकिन कभी भी उसमें से बनाएंगे नहीं तो कभी आनंदित नहीं होंगे। उसी तरह से गुरु महाराज के आदेशों को जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हम अपने हृदय में कोई आनंद का आस्वादन नहीं कर सकते। उसके बाद है एल। एल से है लव। यानी आप जब भगवान के पवित्र नाम को श्रवण कर रहे हो, पहले उसको अध्ययन कर रहे हो और उसके बारे में पूछ रहे हो, अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हो, तो आपके हृदय में प्रेम जागृत होना चाहिए, है ना। तर्क वितर्क करते रहे, सिद्धांत पता चलता रहे, शास्त्रों को अध्ययन करते रहे, लेकिन यदि प्रेम जागृत नहीं हो रहा है हृदय में तो समझो कोई प्रॉब्लम है। उसकी वजह क्या है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए। जो प्रेमी है, जो शुद्ध वैष्णव है, उनके साथ साथ रहेंगे तो हृदय के अंदर प्रेम जागृत होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? प्रेम केवल भावना नहीं है, प्रेम कार्य है। कि जब आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके लिए कार्य करते हो, है ना। कि मैं ना अब जो भी खाऊंगा पहले तुम्हें खिलाऊंगा कृष्ण, सुबह उठने से पहले सबसे पहले मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, रात जब भी मेरी आंखें खुले तो सामने तुम नजर आओ, और है ना जो भी बात हो भगवान के साथ शेयर करना, भगवान से प्रेम करना, प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान को अपने जीवन का एक अंग बना लेना कि कृष्ण अब जिस महफिल में तुम नहीं, तुम्हारा नाम नहीं, वहां मुझे आनंद नहीं आता। तो वास्तव में ये प्रेम जागृत होना चाहिए। परंतु ऐसा भी नहीं है कि हम बस अभी श्रवण करें और उसी दिन से हम हृदय भी पवित्र हो जाए और हम भगवान से प्रेम करना। इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग ये हरे कृष्णा सारा दिन करते रहते हो, इधर से आपको नींद आ रही होती है और इन्हें जैसे तैसे करके अपना जप पूरा करते हो। ये भगवान का नाम भाव से लेना चाहिए। बस एक बार भगवान का नाम लो और कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, हृदय से लेना चाहिए। आप लोग कैसे ये नाम ले रहे? तो वास्तव में क्या है कि एक विधि है भगवान का नाम। वाकई में एक दफा भगवान का नाम यदि हृदय से निकल जाए, यदि शुद्ध नाम का उच्चारण हो जाएगा तो क्या होगा, वास्तविक कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो कैसे है, जैसे एक तीर बुलजायर पर जो निशाना होता है उस पर यदि डायरेक्ट से लगेगा तो आपको ओलंपिक गोल जो है वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उस निशाने पर लगाने के लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितने टाइम तक पहले आपको तीर चलाना सीखना होता है। उसी तरह से भगवान का पवित्र नाम, पहले हम नाम अपराध के साथ लेते हैं, फिर आगे जाके नाम आभास होता है, फिर शुद्ध नाम। तो इस तरह से प्रेम प्राप्त करने की विधि वही है, वास्तविक नाम से ही। जैसे नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। प्रेम से नाम जपते 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 आगे वो सब जो भौतिकता है वो समाप्त हो जाएगी और केवल प्रेम ही बाकी रह जाएगा। उसके बाद है आई। आई से क्या है? इम्बाइस। यानी शास्त्र ऐसे नहीं है कि प्रवचन सुन लिया तो प्रवचन खत्म तो श्रवण खत्म, ऐसे नहीं। नित्यम भागवत सेवया। शास्त्र को श्रवणपा जी बोलते हैं, शास्त्र हर रोज श्रवण करना चाहिए और हर समय शास्त्र का स्मरण रखना चाहिए। यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, यदि हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, वास्तव में ये हमें याद रखना है शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, पदम पदम ये त्रिपता सर्वत्र दुखम पश्य। ये जीवन मिलाए दुख उठाने के लिए है। तो यदि कोई दुख आता है और हम उस दुख में बहक जाते हैं, या जब सुख आता है तो सुखों में बहक जाते हैं, तो फिर जो सुना उसका क्या फायदा? भगवान कहते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभा जया। जो आपको जीवन में जो सुख मिलता है, जो दुख मिलता है, जो लाभ होता है, जो हानि होती है, जो अगर आपकी जीत होती है या पराजय होती है, तो उसको समझना है, उसको एक जिस तरह से हमने शास्त्र सुन रहे होते हैं, तो शास्त्र को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना है कि हमको उसी के अनुसार अपने जीवन में उसको हर समय याद रखना है कि शास्त्र में क्या बताया गया था और आज मेरे पास ये अगर परिस्थिति है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं। और उसके बाद है एस। ये सबसे सुंदर है क्योंकि एस से आता है सर्विस यानी सेवा। जब तक हम आध्यात्मिक में उन्नति नहीं कर सकते जब तक कि हम सेवा नहीं करेंगे। जब ज्ञान प्राप्त हो जाए और ना भगवान के पवित्र नाम का जप भी कर रहे हैं और है ना, लेकिन अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो कभी आनंद नहीं आएगा। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करके अगर हम सेवा करते हैं किसकी, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की, तो अध्ययन करने से क्या होगा, वैसे ही आपको जब भी सेवा मिलेगी। तो अगर आपने अध्ययन नहीं किया होगा, श्रवण नहीं किया होगा, तो क्या लगेगा, सेवा भोजा लगेगी। लेकिन यदि आप श्रवण कर रहे हो, आप ना शुद्ध भक्तों का संग कर रहे हो, आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, तो क्या लगेगा कि ये सेवा, कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मुझे भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीव अपने आप को सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट समझता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भर्ता पद कमल दास दास दासानुदास। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात इतनी है कि मैं गोपी के जो भर्ता है, अतः भगवान श्री कृष्ण उनके चरण कमलों के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। तो ये भाव अपने अंदर क्रिएट करना है। और अंतिम है ई। ई से क्या आता है, एक्सप्लेन, यानी कि अगर आप श्रवण करते रहे हो, सुन रहे हो अच्छे तरीके से, और पता है कब, जब हम अच्छे तरीके से सुनते कब है, जब हमें किसी को बताना होता है। आप कभी सोचो कि आज कोई आपको बोले कि भाई आज जो क्लास में सुनोगे वो मुझे आके सुना ना, फिर आप कितना उसको गौर से सुनते हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द को याद करोगे। और हम कभी पूछते हैं भाई आप इस क्लास को गौर से सुनना, और फिर हम आपसे इनके विषय में पूछेंगे, प्रश्न करेंगे, तो सब लोग बहुत ही गौर से सुनते हैं। तो वास्तव में हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी ये हमें मिल रहा है, जो दिव्य ज्ञान है, वो हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है ना। जैसे एक नदी होती है, नदी का पानी अगर बहते रहे तो वो स्वच्छ होता है, लेकिन यदि कोई तालाब होता है और उसका पानी यदि बहता नहीं है, उधर ही रहता है, फ्रीज होता है, तो क्या होता है कि वो बदबू बदबू वाला हो जाता है, अब तक अच्छा नहीं होता है, मतलब साफ स्वच्छ नहीं रहता है। उसी तरह से ज्ञान भी यदि आप अर्जित करते रहो करते रहो करते रहो तो आपके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन फिर जब सेवा भाव से हम ज्ञान का प्रचार करते हैं कि मेरा कार्य, मेरे गुरु महाराज का ये आदेश है कि मैं ये ज्ञान आप सब तक पहुंचाऊं, ये सोचकर, अपने आप को दास अनुदास समझकर, सबकी सेवा समझकर इस ज्ञान को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो वास्तव में उन्नति होती है। क्योंकि फिर जब बताते हैं तो क्या होता है, उसको हम मनन कर रहे होते साथ में, और फिर इस तरह से हमारी भक्ति में उन्नति हो रही कि मुझे बताना है तो मुझे पहले अप्लाई करना है जीवन में, और हृदय पवित्र हो रहा होता है। तो वास्तव में श्री प्रभुपाद ने क्या कहा कि रियलाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन द पैरट लाइक चैंटिंग। कि वास्तव में यदि हम खाली सुनते रहें और श्लोकों का उच्चारण करते रहें और हृदय के अंदर कोई रियलाइजेशन नहीं है, यदि हम अपने जीवन में उसको उतार नहीं रहे हैं, तो वो सब व्यर्थ है। तो आज शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से यह प्रश्न किया कि मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातन मन्यत्र सांदसाम, कि आप भले ही वैदिक मंत्रों की लय को इतना अच्छे तरीके से नहीं जानते हो, लेकिन क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हो और आपने साक्षात्कार किया है, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको अपने जीवन में रियलाइज किया है, उसके अनुसार अपने जीवन को गुजारा है, तो आप ही शुद्ध भक्त हो। और शुद्ध भक्त के जो होते हैं वो यदि हम उनके मुखारविंद से सुनेंगे तो ही हम हमारे जीवन का रियल वास्तविक जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो आप ही लायक हो और हम ऐसा मानते हैं, इसलिए हम आपका बहुत, उन्होंने इसलिए आदर किया। वास्तव में हमारी जो ये वैदिक संस्कृति है ना, जो ये सनातन धर्म की संस्कृति, वो आदर की संस्कृति है। उसमें क्या होता है, जो श्रोता होते हैं वो वक्ता को आदर देते हैं कि आपके अंदर भले ही दोष दिख रहा है, कुछ दोष है भौतिक स्थिति पर, लेकिन आप वास्तव में क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, तो आप आदरणीय हैं इसलिए हम आदर कर रहे हैं आपका, क्योंकि जब तक हृदय के अंदर वक्ता के प्रति आदर नहीं होगा तो फिर उस ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी। तो वास्तव में वक्ता के प्रति हमें आदर रखना चाहिए, और लेकिन वक्ता को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आदरणीय हूँ। आगे हम पढ़ेंगे वो जो सूत गोस्वामी है वो ऋषियों को बोलेंगे द्विजोत्तमा, आप मुझे बोल रहे हो लेकिन मेरे नजरों में तो आप बहुत महान भक्त हो, क्योंकि आपने भगवान के विषय में पूछा है, आपके हृदय में भगवान के विषय में श्रवण करने की इतनी लालसा है, तो मुझसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ आप हो। तो क्या होता है, वक्ता श्रोता को आदर देता है, श्रोता वक्ता को आदर देता है, और अंतिम इसका लक्ष्य क्या है, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा है, तो वास्तव में हम भगवान को आदर दे रहे होते हैं, क्योंकि भगवान शुद्ध भक्तों को आदर देने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कल से सूत गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।